घोड़े हाँकने के बाद भी नहीं चल रहे, तो बेचारे कितना भार।
और उधर अर्जुन के घोड़े तो सब अप्राकृत थे, दिव्य थे, और सारथी तो कहना ही नहीं, सारथी भी कमाल कर रहे थे, तो अब वो कितना भागे। घोड़े थक गए, या थकने का मतलब है घोड़े गिर पड़े, चलते 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 पस्त होकर गिर गए। जब गिर गए तो रथ त्याग करके भागा। तो अर्जुन भी धर्म युद्ध करने वाले थे, उन्होंने भी भगवान कृष्ण से कहा रथ रोक दीजिए, तो ये भी उतर गए रथ से और ये भी पैदल पकड़ने के लिए भागे। जो व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो उसको रथ पर चढ़ करके पकड़ना ठीक नहीं। कोई पैदल दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, उसको कोई कार से खदेड़े पकड़ने के लिए, ये तो ठीक नहीं। तो युद्ध में पुलिस तो इस तरह पकड़ेगी ही लेकिन युद्ध जहाँ हो रहा हो उस तरह से युद्ध समान लोगों में होना चाहिए। तो अर्जुन रथ छोड़ दिए, तो और उसने क्या किया कि उसके मन में विचार है, अश्वत्थामा के मन में विचार है कि ब्रह्मास्त्र ही मेरी रक्षा कर सकता है। किस तरह से रक्षा करेगा कि ब्रह्मास्त्र से मैं अर्जुन को ही समाप्त कर दूं, और वो आसानी से हो सकता था कार्य। उसके मन में विचार आया, लेकिन अर्जुन का वध करने के बाद भी ब्रह्मास्त्र पूरे जगत को ध्वस्त कर सकता था, वो जानता था। इसीलिए पहले के वीर अस्त्रों को लौटाना भी जानते थे, जिसका वो वध करना चाहते थे उसका वध हो जाने के बाद वो लौटा लेते थे। वो लौटाना नहीं जानता था कि कुछ भी हो, लौटे या न लौटे, मैं तो बच जाऊंगा, पूरी दुनिया मर जाए। अब मरता क्या न करता बेचारा, तो ब्राह्मण का लड़का था, इतना परेशान था, इतना परेशान। अब उसने देखा कि ब्रह्मास्त्र के अलावा मेरी कोई शरण नहीं, कोई रक्षक नहीं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन पकड़ने गए थे, अब अर्जुन के प्राणों पर ही विपद आ गई। यह संसार इतना भयानक है, अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में गिर गया, त्राहिनाथ हमें बचाई, क्या अस्त्र आ रहा है, क्या तेज है, क्या है, वो ये भी नहीं समझे कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ बाण है। अश्वत्थामा जब बाण चलाया तो शुरू में वो बिल्कुल साधारण बाण लगा, और जाकर के आकाश में बहुत आग उगलने लगा, बहुत से अनंत संख्या में बाण उससे उत्पन्न होने लगे, लगा सारा संसार बाण से अग्नि से भर गया, और वो अग्नि अर्जुन के तरफ लक्ष्य करके आने लगा। अर्जुन ने इस तरह से देखा, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र समथिंग लाइक न्यूक्लियर बम ये होता है, विकिरण होता है, पूरा वायुमंडल ही आग में बदल जाएगा। ऐसा पता नहीं किस तरह का न्यूक्लियर बम होता है, ऐसे उसका विकिरण होता है, पूरी त्रिलोकी आग से भर जाती है। अश्वत्थामा इस तरह से चला है, जदा अशरणम आत्मानम ऐच्छत श्रांत वाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मज, आत्मत्राणम मेरी रक्षा यही करेगा। और अर्जुन को तो मरना ही था उस दिन। यह जो अश्वत्थामा की प्रवृत्ति है केवल नई नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस तरह का संकट आने पर विवेक खो देता है, कुछ भी हो लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, उसने ये सोचा, आत्मत्राण और द्विजात्मज उसकी अदूरदर्शिता को सूचित कर रहा है। द्विजात्मज था, क्षत्रिय होता तो कुछ और विचार करता, या उसके कच्चे उम्र को भी सिद्ध कर रहा है, बच्चा था अभी अश्वत्थामा। बच्चे सच्चे भी होते हैं और कच्चे भी होते हैं, पक्का नहीं होते, कहते बच्चा सच्चा होता है लेकिन बच्चा कच्चा भी होता है। समझ में बात नहीं आई, मैं इसके द्वारा कितना बड़ा विनाश करूंगा। जो अर्जुन लौटाना नहीं जानते ब्रह्मास्त्र को, तो विश्व का प्रलय अब होने वाला था। जनता ने यह मान लिया कि अब जगत का प्रलय होगा, उसके तेज को देखकर भगवत में आ रहा, माना कि अब तो प्रलय आ गया, क्योंकि लोग कथाओं में शास्त्र में सुनते हैं पढ़ते हैं कि प्रलय में सारा जगत में आग भर जाती है। तो इधर से कोई आग लगाया नहीं, कोई इधर से लगाया नहीं, आकाश में भहा भहा केवल आग कहां से आ गई, प्रलय होने वाला है, जनता ने यही मान लिया, सब घबरा गए, हाहाकार करने लगे। इस तरह वो अपनी रक्षा के लिए चलाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाने में कुछ विधि होती है। वो तुरंत उपस्पृश्य सलिलम जल से आचमन किया, कुल्ला किया पहले, आचमन करके और समाहित कुछ मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ करके एकाग्रचित से संदधे संधान किया, अजानन उपसंहारम, उसका उपसंहार करना नहीं जानता था, लौटाना नहीं जानता था। प्रश्न होता है जब लौटाना नहीं जानता था तो क्यों चला दिया, कहते प्राण कृच्छ उपस्थित, प्राण संकट उपस्थित हो गया था इसलिए चला दिया, उसने बुद्धि काम नहीं की, गलती पर गलती करता जा रहा है। प्राण कृच्छ उपस्थित, किसी व्यक्ति को कोई मारने के लिए आ रहा हो तो उसमें बुद्धि काम करेगी, उसके पास जो शक्ति रहेगी वो लगा देगा, चाहे आगे जो कुछ भी हो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे कहकर आदमी टाल देता तो चला है। ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम, तो उस ब्रह्मास्त्र से बहुत वेग से और बहुत विस्तार से अग्नि छा गया आकाश में, निकलने लगा अग्नि के बाण, करोड़ों करोड़ों निकलने लगे, उस सारा जगत आग से भर गया। प्रादुष्कृतम प्रचंडम सर्वतो दिशम, उस आग के लिए शुद्ध जी कहते हैं प्रचंडम, भयानक आग। साधारण यहां जो हम लोग आग तापते हैं थोड़ा सा जलाते हैं, ये आग तो उसके करोड़वे अंश के बराबर भी नहीं, कुछ नहीं, प्रचंड आग। और सर्वतो दिशम, समस्त दिशाओं में वो फैलने लगे। प्राणा पद्म अभिप्रेक्ष्य विष्णु, जिस विष्णु जिष्णु रुवाच, जिष्णु ने देखा, मतलब अर्जुन का एक नाम है जिष्णु, जिष्णु ने देखा कि प्राण आपदम, अब तो मेरी जान जाएगी, चले थे अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, अब तो अपनी ही जान जाने वाली, प्राण आपदम, प्राणस्य आपदम अभिप्रेक्ष्य, समझ गए कि अब मुझे मरना पड़ेगा। तो विष्णु से बोले, श्री कृष्ण से बोले, विष्णु से जिष्णु बोले, जिष्णु का अर्थ होता है जो सदा जयशील होता है, कभी नहीं हारता है, तो जिष्णु कहता है जो सभी युद्धों में जीत सकता है, जीता है आज तक, और जीतने के कारण ही अर्जुन को एक नाम दिया गया था जिष्णु। लेकिन जिष्णु भी आज विष्णु की शरण ले रहा है, जो सदा जीता था, जयशील है, उसके भी प्राणों पर आपदा आ गई। देखिए भगवान में और दूसरे व्यक्ति में भेद। और विष्णु वहां कोई हाथ में अस्त्र भी नहीं लिए थे, सारथी का काम कर रहे थे, रथी सारथी को बचाता है, नियम यह है सारथी की रक्षा करता है, सारथी भी बचाता है लेकिन रथ संचालन द्वारा बचाता है, और अस्त्र शस्त्र से बचावे ऐसा ही सारथी का काम नहीं है, रथ संचालन के द्वारा भले वो बचा सकता है, लेकिन महारथी अर्जुन श्री कृष्ण के चरण में गिर गए कि बचाइए बचाइए बचाइए, अब तो मैं मरने वाला हूं, वो समझ गए कि यह बाण मेरे तरफ आ रहा है, और भयानक ऐसा उन्होंने देखा नहीं था, इतना भयानक बाण। इस तरह से उनके पास भी ब्रह्मास्त्र था, ये चलाना जानते भी थे, लेकिन फालतू क्या इस तरह का काम करें, तो वे समझ नहीं पाए कि ये ब्रह्मास्त्र है। तो विष्णु कृष्ण को कहा गया, विष्णु का अर्थ है जो इस जगत को उत्पन्न किए हैं और सब जगह हैं, सबका पालन करते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। समय पड़ने पर पता चलता है कि भगवान क्या है और व्यक्ति क्या है, ऐसे तो दोनों मित्र थे, कोई भी कह देगा अर्जुन और कृष्ण एक समान है। कभी कभी अर्जुन व्यंग में कहते भी थे कि लेकिन कृष्ण आप में तो बहुत बहुत गुण है, लेकिन एक ही कमी है कि आप झूठ कभी नहीं बोलते। मतलब उनके कहने का ऐसा था, व्यंग करते थे कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। और कृष्ण इसीलिए कहे गीता में कि तुम घोषणा करो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता है, नहीं तो हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज प्रख्यात थे सत्य बोलने वाले, और भगवान श्री कृष्ण प्रख्यात थे झूठ बोलने वाले, परंतु उनका झूठ बोलना भी भगवान है, सत्य का ही एक दूसरा रूप है। तो अर्जुन कभी कभी मजाक करते थे, और आज सारथी बना ही लिए हैं, सारथी बना करके अपना रथ हकवा रहे थे, लेकिन जब समय पड़ा तब पता चला कि सारथी क्या है। तो प्राण बचाने के लिए अब वो किसकी शरण में, कृष्ण की शरण लिए, गिर गए शरण में। क्या कहते हैं अर्जुन वाच, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर घोष संस्कृत कृष्ण कृष्ण। इसको संस्कृत में विप्सा कहते हैं, दो बार जब कोई शब्द बोला जाता है तो उसको विप्सा कहते हैं। और कोई व्यक्ति जब दो बार बोलता है तो उसके कई कई अर्थ होते हैं। यहाँ कृष्ण कृष्ण संभ्रम को सूचित कर रहा है, कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, दो बार नाम निकला। अथवा हमारे आचार्य टीका करते हैं कि भगवान का नाम सभी विपत्तियों से रक्षा करता है, इसलिए नाम का भी आश्रय ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से व्यक्ति बच सकता है महामंत्र के कीर्तन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना बड़ा विश्व विजयी योद्धा अर्जुन अंत में भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। भक्ता नाम भयंकर हे महाभाग, हे महान ऐश्वर्यशाली, हे भक्तों को अभय करने वाले, आप ही एकमात्र जन्म मरण के भय से सभी जीवों की रक्षा करते हैं, जलन से रक्षा करते हैं, संसार के आग से भी, संसार दवानल से आप बचाते हैं सभी जीवों को। केवल आप त्वमेको, त्वम एक, केवल आप ही बचा सकते हैं जन्म मृत्यु आदि दुख से। फिर इस आग से बचाना आपके लिए कौन बड़ी बात है, कुछ भी हो, पूरे ब्रह्मांड में आग लगी हो, लेकिन यह आग जन्म मृत्यु की आग के सामने कुछ भी नहीं है। जीव जलता रहता है शोक में, इसे संसार दावा नल लीढ लोक, संसार मतलब जन्म मरण, भूख प्यास, रोग दुख, बुढ़ापा। बहुवचन में कह रहे हैं कि दह्यमाना नाम, जो इस संसार दावानल में झुलस रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए आप ही एक अपवर्ग असी संस्कृत, संस्कृत से आप ही अपवर्ग हैं, अपवर्जयिता मतलब उसे जलन से मुक्त करने वाले आप हैं, आप ही बचा सकते हैं। इसका अर्थ है कि जब श्री कृष्ण की शरण लिए अर्जुन, रथ पर से तुरंत सारथी के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके और लगे कहने, त्राहि त्राहि मेरी रक्षा कीजिए, तो मानो भगवान ने कहा कि अरे हमारी शरण क्यों ले रहे हैं। तो कहते हैं क्योंकि तुम एक, केवल आप ही दुख से मुक्त कर सकते हैं, सबको मुक्त करते हैं। ये अर्जुन के मुख से भगवान कृष्ण का गुणानुवाद है। तो सभी व्यक्ति, सभी लोग इस संसार में जल रहे हैं दुख से, और उस दुख से मुक्त कौन कर सकता है, कृष्ण। किसका अनुभव है, जो संसार में सबसे बड़ा वीर था, सबसे बड़ा धीर व्यक्ति, जो भगवत गीता का अधिकारी है, श्रोता है, वो बोल रहा है केवल आप दुख से मुक्त कर सकते हैं जीवों को। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण की शरण नहीं लेगा, यदि उसके पास कुछ ब्रेन होगा तो, है ना। लेकिन एकदम ब्रेनहीन है, बुद्धिहीन है, बुद्धू है, तब तो वो दूसरे की शरण ले सकता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। एक शब्द रिजर्व अर्थ ले रहा है, केवल कृष्ण दुख से मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। विपद में साथी एक देवकी के लाल दिनवा कातर भयल,
सुदामा जी की पत्नी कह रही है सुदामा जी से कि आप जाइए जाइए द्वारकाधीश के पास जाइए, विपद के एकमात्र साथी वही है। और लोग संपत्ति में साथ देते हैं लेकिन कृष्ण विपत्ति में अधिक साथ देते हैं, सदा भक्तों को सहारा दिए हैं। तो अब तक जो अर्जुन को बचा करके लाए हैं महाभारत युद्ध में, क्या इससे नहीं बचा सकते थे? तो बचाएंगे। और अर्जुन ने अपने जीवन में अनुभव किया है एकमात्र भगवान कृष्ण ही दुख से मुक्त कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो लोग भी संसार के कष्ट में हैं उनको मुक्त कर सकते हैं। तुमेको दह्य माना नाम अपवर गोष संस्कृते, क्यों? क्योंकि आप महाभाग हैं। भाग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और महा का अर्थ है अनंत बड़ा। जिनका ऐश्वर्य अनंत है, जिनका बल, जिनका धन, जिनका ज्ञान, जिनका सौंदर्य, लोगों पर प्रभाव, सब कुछ अमित है, उनको महाभाग कहते हैं। ये आपका सब कुछ असीम है, इसलिए आप ही सबको बचा सकते हैं। केवल मुझे ही नहीं, आप समस्त जगत को बचा सकते हैं। और वास्तव में भगवान इस तरह से समर्थ हैं, इसीलिए तो वे सबसे कहते हैं मेरी शरण लो, मैं योग क्षेम वहन करूंगा। कोई है व्यक्ति केवल बंबई में, केवल बंबई के लोगों को कहे कि मैं योग क्षेम वहन कर लूंगा, आप लोग सब मेरी शरण लीजिए, सबको भोजन कपड़ा आदि मैं दूंगा और आगे भी मुक्त कर दूंगा संसार बंधन से, कोई ऐसा नहीं कहेगा। ऐसे इंश्योरेंस खोल खोल करके लोग कहते हैं कि हम जोक्षम वहन करेंगे। जोक्षम क्या वहन करेंगे? एक इंश्योरेंस होता है मरने के बाद, कहते हैं मरने के बाद परिवार को दें, उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ये क्या लाइफ इंश्योरेंस हुआ? लाइफ इंश्योरेंस का अर्थ है कि हमारी जान आप बचा सकते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे स्वजन को पैसा दे देंगे, इसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो दुनिया प्रकट देख रही, सुन रही। और मैं तो ये भी पढ़ा हूं, वो योग क्षेमम वहां में हम अपने ऑफिस या ऑफिस के बाहर लिखे रहते हैं, है ना? भगवान का पद ले लिया, गीता बोल रहे हैं योग क्षेम वहन हम करें। योग का अर्थ है कि जो नहीं है उसको मैं दूंगा, जुटाऊंगा, और क्षेम का अर्थ है जो है उसको बचाऊंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो जुटा जुटा करके दूंगा। योग क्षेम वहन, भगवान कहते हैं मैं योग क्षेम वहन करता हूं, किसका? जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है। तो प्रश्न होगा कि दुनिया के सभी लोग अनन्य भाव से भजन करने लगे तब भी कोई अंतर नहीं? अरे बिना भजन के ही वे सब दे रहे हैं, है कि नहीं? वही दे रहे हैं, हवा पानी पृथ्वी सब दे रहे हैं। मैं इस विषय पर बहुत बोला करता हूं, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, ये योग क्षेम वहन है, सबको सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर शरण ले लेने पर स्पेशली क्यों नहीं देंगे? भागवत में कहीं कहीं शब्द आते रहते हैं, उन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्जुन यह कहते कि आप संसार बंधन में जलने वाले जीवों को, संसार के दवानल में जलने वाले जीवों को मुक्त करने वाले, तो ठीक है भाई कृष्ण है, लेकिन इसके साथ संभावना रहती कि कुछ और भी होंगे, ये भी है कुछ और भी होंगे, लेकिन अर्जुन वाद कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, और कोई नहीं है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बस अकेले आप और कोई नहीं, केवल आप हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है प्रवचन में कहना और कोई नहीं है ना, क्योंकि आज लोग एक का अर्थ उतना क्लियर नहीं समझेंगे, एक बस। और एक का अर्थ यह नहीं हुआ कि चलो भाई अपने समान यही हैं और लोग भी दुख मिटाने वाले हैं कुछ परसेंटेज, नहीं, एक परसेंट भी कोई दुख मिटा नहीं सकता, केवल भगवान दुख मिटाते। तो अर्जुन जैसा विजेता जो प्रख्यात है वास्तव में, उनके समान कोई सफल व्यक्ति नहीं हुआ, जो इसी देह से स्वर्ग गए और देवताओं की रक्षा की है, भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया है अर्जुन ने, इनके युद्ध कला से प्रसन्न होकर के प्रलय करने वाला अपना अस्त्र दिए थे अर्जुन को, जानते थे कि युद्ध होगा आगे, तो स्नेह से अर्जुन को उन्होंने दिया था प्रसन्न होकर। अर्जुन कभी उस पाशुपतास्त्र को नहीं चलाए, विश्व का प्रलय करता। इंद्रदेव दिए थे और सभी लोकपाल लोग अपना अपना अस्त्र दिए थे अर्जुन को, सभी इतना प्रेम करते थे, इनमें इतना बल था। और सबसे बड़ा गुण तो है कि भगवान श्री कृष्ण जिससे इतना स्नेह करे, अब उसके लिए कहना ही कि कौन गुण बाकी रह जाएगा, जिसके सारथी बने, जिसके साथ खाए खेले। दुर्योधन की सभा में भगवान ने स्पष्ट कहा था संधि दूत बन करके जाने पर, श्लोक है, भगवान कहते हैं जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है, मैं किसी भी हालत में अर्जुन को नहीं छोड़ सकता। इस सभा में इस तरह की बात कहना बहुत मुश्किल की बात, और भगवान अपने समधि से बात कर रहे थे दुर्योधन से। वो कहा कि आप खा लीजिए, आराम कर लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा गेस्ट हाउस सवार करके रखा गया है, सब एसी रूम है, अटैच्ड बाथरूम है, सब कुछ है, सब मार्बल से मढ़ा हुआ है, आप इसमें रहिए, आपको युधिष्ठिर का दूत कहने में शर्म नहीं लगती है? मैं कहां सोच रहा था कि हमारे समधी आ रहे हैं, आप द्वारकाधीश आ रहे हैं, आपका स्वागत होना चाहिए, तो आप अपने मुख से कहते हैं मैं युधिष्ठिर का दूत हूं। छी छी, हाथी हाथी शोर भैली, हाथी करे टी भोजपुरी में कहावत है, बाप बाप, हल्ला हुआ कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, इतनी महान व्यक्ति आ रहे हैं, इनके लिए जगह जगह रास्ते में व्यवस्था की गई स्वागत की। वास्तव में दुर्योधन ने ये प्लान किया था, कृष्ण का इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि वो पांडवों को भूल जाए, हमारे पक्ष में हो जाए। इसके लिए रास्ते में भी कई जगह मिडवे होटल की व्यवस्था की गई थी, बहुत बहुत रेस्ट रूम और क्या क्या, रेस्ट रूम तो शौचालय को कहते हैं विदेशों में जो कुछ भी बहुत सुंदर व्यवस्था रास्ते में की गई थी। और अंत में दुर्योधन दुशासन का महल खाली कराया गया था, सबसे बेस्ट महल वही था, मतलब दुर्योधन के बाद इतना गुमानी था कि अपने भवन में भगवान को नहीं ठहराना चाहता था, दुशासन का भवन खाली कराया गया था उसमें कृष्ण को ठहराने के लिए, और नौकर हजारों नियुक्त किए गए थे कृष्ण का, इतना स्वागत करो, इतना स्वागत करो कि हमारे पक्ष में हो जाओ, खास करके उनके खाने की व्यवस्था करो, क्योंकि जो चटोर है, मक्खन आदि चुराते थे, उनको चोरी की आदत, मतलब खाना जानते हैं, और ऐसे भी भक्त लोग बहुत भोग लगाया करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो खाते हैं, खाने से बदल सकते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागी साग विदुर कर खाए, बहुत व्यवस्था थी। तो भगवान को उन्होंने उसने कहा कि आइए द्वारकाधीश चलिए आप अतिथिशाला में पधारी। तो भगवान ने कहा कि मैं इस बार आपके समधी के रूप में नहीं आया हूं, मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर आया हूं, और इन दूत के लिए नियम है कि उसका जब काम हो जाता है तब वो खाता है पीता, तो पहले आप मेरी बात सुनिए और उसे मानिए, इसके बाद मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो दुर्योधन कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, बाद में आप जो कुछ कहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन इसमें आपको ये कहना नहीं चाहिए कि युधिष्ठिर का दूत बनकर आए, युधिष्ठिर तो खुद आपका दास है, वो क्या आपको दूत बना सकता है इस तरह से बोलता था। आपके लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि आप कहेंगे दूत, भगवान सभा में कह रहे नहीं नहीं, मैं युधिष्ठिर महाराज का दास हूँ, अर्जुन का सखा हूँ, मैं उनका काम करने के लिए आया हूँ, मेरा काम कर दीजिए तब मैं खाऊंगा पीऊंगा, नहीं तो नहीं। तो लोग तब अरेस्ट करने की सोचने लगे, पहले प्रेम से फुसलाना चाहते थे, अपने पक्ष में करना चाहते थे, और सोचे कि इसको अरेस्ट करके हस्तिनापुर के जेल में डाल दो 20 साल के लिए, और बीच में युद्ध हो जाएगा फिर बीच में युद्ध कर लेंगे, ये रहेगा तो बहुत कुराफात मचाएगा, अरेस्ट करो, तो कृष्ण को बंद करने के लिए सोचने लगे। तब भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो क्या समझते हो मैं अकेले हूं, देखो समस्त देवता मेरे साथ हैं। कौन ऐसी बड़ी रस्सी है जो मेरे देह में आट सकती है।
उन लोग देखे कि पूरा ब्रह्मांड भर गया भगवान के देह,
जंजीर बड़ी क्या लाए हो।
गंभारी से दिलकर लिखते हैं,
पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख। देखो गत और अनागत काल देखो, मेरे भीतर अनादि काल से कितनी बार सृष्टि हुई, कैसे कैसे लोग हुई ये देखो, और भविष्य में क्या सृष्टि होगी ये भी देखो, और देखो महाभारत का युद्ध हो चुका है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। देखो मृतकों से महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि पटी हुई, और पहचानो तुम्हारी लाश कहाँ पड़ी हुई। और दुर्योधन देख रहा है कि मैं मरकर पड़ा हुआ, और कुछ वीर उनके दांतों के नीचे अटके हुए। इसको कहते हैं भगवान, भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रकट। कोई व्यक्ति किसी आदमी को, किसी तुच्छ मनुष्य को भगवान कहता है तो वास्तव में यह बहुत बड़ा अपराध है। बस सस्ता शब्द हो गया है, और प्रिंटिंग प्रेस में भी स्वतंत्रता है, लिख दो पूर्ण पुरुषोत्तम। अरे कुछ संभल करके बोला करो, संभल करके लिखा करो, और नहीं बताओ क्या लीला हुई है। इस तरह कुछ तो कहना पड़ेगा ना। इसी तरह से ये मूर्खों का वास्तव में दल है, किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के टाइटल जोड़ देना, ये कर देना, वो कर, जैसे कुकुर के गले में लिख दिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और गली गली में घूम रहा है, और जो भी बाचेगा तो हंसेगा कि नहीं है। अथवा किसी पागल के भिखमंगे के गले में लिख करके एक बैच लटका दीजिए भारत के राष्ट्रपति। तो जिस तरह एक कुत्ता के गले में लिख दिया जाए, उसके सिर पर लिख दिया जाए, अथवा गोदना गोद दिया जाए सदा के लिए, लिख दिया जाए भारत के प्राइम मिनिस्टर है ये है वो, इससे होगा क्या? वो कुत्ता गली में घूमेगा, जहां तहां मल मूत्र सूंघेगा, खाएगा पिएगा, यही उसकी, यही उसका मंत्रित्व है ना। उसे विचार नहीं करते, गुरु बना लिया गुरु को, बस भगवान गुरु हो गया। कलयुग में ये था, त्रेता में ये था, तो कलयुग में ये आ गया। इस तरह के पागल लोग बहुत बहुत बोल रहे हैं, बहुत बहुत, क्या मैं नाम रखू इस पवित्र मंच से, इन दुष्टों का नाम लेना ठीक नहीं है ना। मैं स्मरण कर रहा हूं यही गलती, मुझे तो अपने कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इस भयंकर युग में जन्म लिए हैं, और कृष्ण के विरोधी बातें जब चलती हैं, तो उस समय सहन नहीं होता। अर्जुन जो बोल रहे हैं वो बातें प्रमाण। तो युधिष्ठिर महाराज के दूत कहने में भगवान की शोभा है वास्तव में, इससे उनके ईश्वरताई में कोई आंच नहीं आती है। लेकिन दुर्योधन कह रहा था क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा है कि कृष्ण कुछ भी करे पर भगवान। युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारा रथ हाँ के तुम्हारे मामा के पुत्र हैं, तुम्हारा पहरेदार है, लेकिन फिर भी ये कृष्ण भगवान है, उन्होंने प्रवचन किया है, वो प्रवचन आएगा। तो अर्जुन इस तरह कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि क्यों ऐसे मेरे विषय में बोल रहे हो अर्जुन। तब ये कहते हैं, तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति है पर, क्योंकि आप साक्षात आदि पुरुष, आप पूर्ण पुरुषोत्तम आदि पुरुष, समस्त जीवों को जन्म आपने दिया है, जिससे सभी पुरुष प्रकट हुए हैं, सभी पुरुष जीवों का जन्म होता है उसको आदि पुरुष कहते हैं, और उसका आदि कोई नहीं है, वो अनादि पुरुष, उनका आदि कोई नहीं, वो सबके आदि है। तुम आद्य पुरुष साक्षात, आप इस प्रकृति के अंतर्जामी हैं, प्रकृति पर और प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के नियंता हैं। मायम विरुद्ध चित शक्त्या, अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा माया शक्ति को दबाकर उसको अपने अधीन रखते हैं, और कैवल्य अस्थित आत्मनि, आप केवल स्वरूप में रहते हैं। जैसे हम लोग केवल में अस्थित नहीं है, हम लोग चिन्मय जीव हैं लेकिन जड़ पदार्थ के भीतर स्थित है, विचार भी कई तरह के बदलते रहते हैं। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में जाएंगे, तीसरे शरीर में जाएंगे, तो हम बहु में स्थित है, केवल में स्थित नहीं है, है ना, विविध रूप बनाते हैं। मनुष्य के भी रूप में परिवर्तन होता है, बच्चा रहता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर वो गाय बैल बन सकता है, वृक्ष बन सकता है, इसको बहुत तो कहते हैं। और जीव चिन्मय है, रह रहा है जड़ जगत में, जड़ पदार्थ में, लेकिन भगवान का जो धाम है वह भी चिन्मय है, और भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है, वहाँ चिन्मय प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए उसको केवल या कैवल्य कहते, भगवान कैवल्य में रहते, जैसे सूर्य, सूर्य जहाँ भी रहता है वो प्रकाश में रहता है ना, सूर्य कभी अंधकार के साथ नहीं रह सकता, ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य यहाँ बैठे हैं और चारों तरफ अंधकार भरा हुआ ऐसा हो नहीं सकता, सूर्य